نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اور کون ہے جو جواب دیتا ہے مضطر کو، جو لاچار ہے اس کو جواب کون دیتا ہے؟ مضطر کا پہلے معنی سمجھے، مضطر وہ شخص ہے جس کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہو اور وہ اس طلب کی وجہ سے مشقت میں مبتلا ہو. سودی کہتے ہیں کہ مستر وہ ہے جو کسی مصیبت کو نہ دور کر سکتا ہو نہ خود اس سے کوئی راحت حاصل کر سکتا ہو. ذوالنون کہتے ہیں مستر وہ ہے جو اللہ کے سوا باقی سب سے رشتے کاٹ چکا ہو، وہ جو دیوالیہ ہو چکا ہو. اور سہل کہتے ہیں کہ مستر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے پاس دعا کے قبول ہونے کے لیے کوئی عبادت کا وسیلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ میری فلاں اس کی وجہ سے، میری فلاں عبادت کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تو میری یہ دعا قبول فرما لے. جیسے ہم کسی اپنے نیک کام کا واسطہ دیتے ہیں نا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جس کا وہ واسطہ دے اللہ کو. یہ انسان ہوتا ہے مستر. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے جو مستر ہے نا، اب لیکن جب تک آپ کو مستر کی نہیں نا بات سمجھ آئے گی، تب تک آپ نا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مستر لفظ کو صحیح سمجھیں، یعنی بہت ہی کوئی مجبور، بے قرار، جو بے قراری کی انتہا کو پہنچ گیا. جیسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ اتنی بے قراری بڑھ جاتی ہے، انسان اتنا زیادہ یعنی بے چین ہو جاتا ہے، کہیں اس کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کھانے میں مزہ، نہ پینے میں، نہ سو سکتا ہے، نہ کوئی کہیں سکون سے بیٹھ سکتا ہے. بس ایک بے کلی اندر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی مصیبت میں ایسا گھرا ہوا ہے نا کہ ہر چیز سے بیزار ہوا ہوا ہے، ہر طرف سے مایوس ہے، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگ رہی. وہ ایسا بے یار و مددگار ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو اس دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے. تو وہ پھر جب اللہ کو پکارتا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ ام من یجیب المستر، یا یہ تو بتاؤ. سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری آیت ہے. اس لیے بہت پیاری آیت ہے کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہونے کا ثبوت دیے. کبھی ذہن میں شاید آپ کے خیال آتا ہو کہ ایک خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت تو ملے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم کیسے مان جائیں. کبھی شیطان ذہن میں یہ بھی باتیں لاتا ہے نا. تو اگر آپ کو دنیا میں بکھری بھی نشانیاں نہیں بھی نظر آتی نا، کوئی ایسا وقت یاد کریں جب آپ بڑی مشکل میں تھے، بڑی مصیبت میں تھے، اس وقت دل خود بخود کس کو پکار رہا تھا بتائیں؟ جب ایسی بے کلی، چھوٹی موٹی مشکلوں کی نہیں بات ہو رہی، ایسی بے کلی ہے، سارے اسباب کٹ گئے ہیں، ساری امیدیں کٹ گئی ہیں، پھر اس وقت آپ نے کس کو پکارا تھا؟ خود بخود دل نے پکارا. وہی تو اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو، جب اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. یہ بات بہت گہری ہے کہ جب تم بے قرار ہوتے ہیں نا، کسی پل تمہیں چین نہیں ملتا، یہ بتاؤ اس بے قراری کے عالم میں کون تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ کون بے قرار کی بے قراریوں کو قرار دیتا ہے جب وہ رب کو پکارتا ہے؟ کون ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو دکھے ہوئے دل کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو اس کا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ایک بے قرار انسان کو جس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، जाहरी सारे असबाब खत्म हो चुके, कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कोई जरा सा भी कोई रोशनदान नजर नहीं आता जहां से रोशनी की कोई जरा सी किरण भी दाखिल हो जाए। तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, तमाम तवक्कुआत खत्म हो चुकी हैं, इतने मायूस किन हालात हैं। इंसान कहता है अब नहीं, अब शायद कोई रास्ता रह ही नहीं गया। उस वक्त इंसान के अंदर से जो पुकार उठती है ना, उस वक्त एक यकीन करें, एक काफिर भी होता है ना, काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, एक एथिस्ट भी होता है जिस जो कभी गॉड को मानता ही नहीं, उसके अंदर से भी ये पुकार उठती है, ओ गॉड। उस वक्त आप कभी देखा होगा, आपने कभी कभी ये दिखाते हैं, कभी जलजलों की या कभी बहुत ही ऐसे बड़े डिजास्टर्स की कोई ये दिखाते हैं ना, किसी जगह पे आया तो उस वक्त वहां पे लोगों के क्या रिएक्शन थे, तो एकदम वो जब लोगों की चीखों की आवाज आती है ना, और लोग कोई ऐसा मंजर अपने सामने देखते हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ये तबाही हो रही है। अब ये यहाँ पे जब जलजला आया था पहले भी तो उस वक्त दिखाया था, तो उस वक्त किसी ने कहा ओ गॉड। आगे पीछे कभी शायद इंसान ना ऐसे बोले, लेकिन उस वक्त गॉड ही मुंह से निकलता है। उस वक्त जीसस भी भूल जाते हैं, उस वक्त हर चीज भूल जाती है, उस वक्त कहाँ से ये अंदर से आवाज आती है ओ गॉड। जैसे 9/11 का वाक्य हुआ था, तो किसी ने कहा कि मैं एथिस्ट था, मैं खुदा को कोई नहीं मानता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब इतने जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ और वो बिल्डिंग में ही था, उसने वो धमाका सुना तो कहता है मेरी मेरी जुबान से क्या निकला, ओ गॉड, गॉड हेल्प करे मुझे, कहता है, लेकिन हालांकि मैंने कभी नहीं जिंदगी में गॉड को पुकारा था। ये कहाँ से आवाज निकलती है? तो कोई काफिर भी हो ना, उसकी भी अंदर की जो फितरत है ना, वो जाग उठती है। तो उस वक्त को दिखा के अल्लाह ताला ने पूछा या बाप से कि उस वक्त जब कोई नजर नहीं आता तो किसको पुकारते हो? उसी को ना जो तुम्हारे दिल की पुकार को सुन सकता है, तुम्हारे दिल की हालत को जान सकता है। याद करें कभी कोई ऐसे लम्हात, ऐसे हालात आपके ऊपर आए हो, कभी हो जाता है जिंदगी में हर एक के, कभी ना कभी ऐसे उतार चढ़ाव जरूर आते हैं कि इंसान अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकता, कह भी दे तो उसको पता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। माँ जैसे प्यारे रिश्ते से भी इंसान नहीं शेयर कर सकता, कभी दिल में आता है उनको क्या परेशान करना, उनको क्या कहना, या कभी इंसान अपनी जिंदगी के साथी से भी नहीं डिस्कस कर सकता, औलाद के सामने भी नहीं रख सकता, बहुत गहरे दोस्त हैं उनको भी नहीं समझा सकता, कहीं नहीं कह पाता, तो इंसान सोचता मैं कहाँ जाऊं, किससे शेयर करूं, किसको दिल की बात बताऊं। बास औकात इतनी बेकरारी बढ़ जाती कि अंदर ही अंदर इतने तूफान आते हैं, कुछ कह दें लेकिन किससे कहें कि कोई ऐसा हो कि मेरे दिल की बात को समझ सके, जिसको मैं सुनाऊं तो वो सुन ले, मैं रात को भी पुकारूं, आधी रात को भी मैं तकलीफ में हूं, मैं पुकारूं तो वो सुन ले, जो मुझे जवाब दे, जिससे मैं कुछ मांगू तो वो मेरी मांग को पूरा कर सके। तो अल्लाह ताला ने इंसान की नफसियात की डेप्थ में जाके उसको दिखाया है कि देखो यहाँ पे इस दिल में जब एक तूफान आता है, एक बेकरारी आती है, एक आ उठती है, तो वो रब तक पहुंच जाती है, रब सुनता है, उसका जवाब देता है, वो है बेकरारियों का जवाब देने वाला। तो उसने पूछा है यहाँ ये बताओ दिल की बात को कौन सुनता है, बताओ बेकरारियों को करार कहाँ से मिलता है, बताओ घबराहटों को सुकून कहाँ से आता है, बताओ अपनी वहशतों में किसको फिर पुकारते हो। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के बहुत प्यारे उसके करीब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कभी वो कोई सख्त तकलीफ का मौका याद करें कि आपके प्यारे करीब हैं, मगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मसलन किसी अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हुए और आप तकलीफ से करा रहे हैं, सारे घर वाले करीब खड़े हैं, उस वक्त वो भी बिल्कुल बेबस है, जो आपके इर्द गिर्द डॉक्टर हैं या रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, सब बेबस हैं, उस वक्त आप किसको पुकारते हैं? अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, तुम पुकार के तो देखो, इंसान तो करीब होते हुए भी कोई मदद नहीं कर सकते, वो रब इनसे भी करीब है। तो इस मजबूरी में, इस तकलीफ में, जब कोई इंसानी सहारा रह नहीं जाता, उस वक्त वो कौन है जिसको तुम पुकारते हो? इसके बारे में एक रिवायत में आता है, ये क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आया था और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और आप इसको याद भी कर लें कि जब इंसान सख्त बेचैन बेकरार हो ना, तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह ताला सुनता है। और ये आयत बड़ी पावरफुल है, क्योंकि इसके बारे में एक वाक्या है कि ताऊस रहमतुल्लाह अलैह किसी बीमार की बीमार पुरसी को गए। जब बीमार ने कहा कि मेरे लिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आपने फरमाया तुम खुद अपने लिए दुआ करो, क्योंकि बेकरार की बेकरारी के वक्त की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। जब आप ये कहते ना, जब आपका दिल बहुत बेचैन होता है, बेकरार होता है, तो आप खुद दुआ करें अपने लिए। आप जिस तरह खुद अपने लिए उस वक्त बेचैन हो के तड़प के दुआ कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। फिर जो एक वाक्या आता है ना, वो आपके सामने रखूंगी कि ये हाफिज इब्ने असाकर ने अपनी किताब में नकल किया कि एक साहब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़ेदानी ले जाया करता था, और इसी किराए पर मेरी गुजर बसर थी। खच्चर की सवारी थी ना, जैसे लोग टैक्सी चलाते हैं, तो वो खच्चर पे लोगों को लेकर जाया करता था। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर मुझसे किराए पर लिया, मैंने उसे सवार किया और चला। एक जगह जहाँ दो रास्ते थे, जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा इस रास्ते पर चलो, मैंने कहा मुझे इस रास्ते का पता नहीं है, और सीधा रास्ता तो यही है। उसने कहा नहीं, मुझे पता है इस रास्ते का, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है, यानी उसने कहा ये शॉर्टकट है, तो मुझे इस रास्ते का पता है, तो मुझे इस रास्ते से लेके चलो। खच्चर समझते ना, पोनी की एक टाइप जैसे। मैं इसके कहने पर इसी राह पर चला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक लकोदक बियाबान में हम पहुंच गए, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता है। नहायत खतरनाक जंगल है, हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा जरा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली, वो उतरा और अपना तहबंद ऊंचा करके, कपड़े ठीक करके, छुरी निकाल के मुझ पर हमला किया। मैं वहां से सरपट दौड़ा, लेकिन इसने मेरा ताकुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैं उसे कस्में देने लगा, लेकिन उसने कोई ख्याल नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ये खच्चर ले ले, सारा सामान ले ले, जो मेरे पास है तू ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। इसने कहा ये तो मेरा पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन उसने मेरी कोई बात का असर नहीं लिया और वो मेरे कत्ल पे तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया, और उससे मिन्नत की कि तुम मुझे बस 2 रकत नमाज अदा करने दो। उसने कहा अच्छा जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी जुबान से कुरान का एक हरफ नहीं निकलता था। आप खुद सोचे, मौत सामने खड़ी भी नजर आ रही हो, इंसान को वो जो याद भी होता है वो भी नहीं याद रहता। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज्यादा खड़ा हुआ था, और वो जल्दी कर रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। उसी वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी जुबान पे आ गई, अम्मन युजीबुल मुस्तराहू, कौन है जो दुखी की दुआ को, बेकरार की बेकरारी के वक्त की दुआ को सुनता और कबूल करता, और बेबसी को, उसकी बेकसी को, उसकी सख्ती को, उसकी मुसीबत को दूर करता है। बस कहते हैं इस आयत का जुबान पे मेरे ऐसे जारी हो गई, बस यही आयत पढ़ते जा रहे थे। तो कहते हैं मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से घुड़सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेजा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है, और बगैर कुछ कहे उस डाकू के पेट में उसने अपना नेजा घोंप दिया जो उसके जिगर के आर पार हो गया। वो उसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं इसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा अल्लाह के लिए मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। तो कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना खच्चर और माल लेकर वापस सही सलामत लौटा। और ये आयत मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़मा के देखी है कि जब इंतहा से ज़्यादा, जब इंसान को ये लगता है ना कि इंसान भी मेरा कुछ भी मेरी मदद नहीं कर सकते, बहुत सख्त, यानी एक इस तरह आपकी कैफियत गुजरी थी मुझ पे जिस वक्त मेरी बहन बहुत सख्त बीमार थी, और उस वक्त यानी डॉक्टर्स और सब ऐसे लग रहा था कि किसी के यानी हर तरफ से मायूसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था किसी के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं, अल्लाह ने दिखा दिया। उस वक्त ये एक आयत थी जिसको कि मैंने यानी मुसलसल इसका विर्द किया था, वो मुझे कोई और चीज़ नहीं आ रही थी कि अम्मा युजीबुल मुस्तराई ज़्यादा, अल्लाह बेकरार की जो पुकार को सुनने वाला वो कौन है सिवाय तेरे, कौन सुनता है। तो वो एक जात ऐसी है जो हर बेकरार को पनाह देती है, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, वो ही है जो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करने वाला। तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह आप किस चीज की तरफ हमें बुला रहे हैं, आपने फरमाया अल्लाह की तरफ जो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं है, जो उस वक्त तेरे काम आता है जब तू किसी भंवर में फंसा हुआ होता है, वो ही है कि जब तू जंगलों में राह भूल के उसको पुकारता है तो वो तेरी रहनुमाई करता है, तेरा कोई खो गया हो और तू इससे इल्तजा करे तो वो तुझे उससे मिला देता है, कहत साली हो गई हो और तू उसे दुआएं करे तो वो मूसलाधार मी तुझ पर बरसा देता है। तो ये वो रब है कि जब इंसान ऐसी किसी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, उस वक्त वही रब है जो उस मुसीबत को दूर करता है। याद करो वो तकलीफ के, कभी तुम किसी जहाज में जा रहे हो और जहाज डोलने लगे, उस वक्त आपकी जुबान से क्या निकलता है बताएं, क्या किसी को याद आता है, कोई दाता साहब, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई खिजर, कोई फलां, कोई फलां, कोई याद आते हैं, कोई मिजार याद आता है, कोई औलिया अल्लाह याद आते हैं? नहीं, उस वक्त सिर्फ मुंह से क्या निकलता है, अल्लाह। खुद सोच ले जिस वक्त जहाज के अंदर कभी ऐसा आपके ऊपर मौका आया हो, जैसे इकरमा पे गुजरा था अबू जहल का बेटा, सोचे इतनी सख्ती थी इकरमा में कि फतह मक्का के बाद मक्का से फरार हो गया, समंदर में जहाज में जाके सवार हो गया कि हबशा चले जाएंगे, इस इलाके में नहीं रहना क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी पड़ेगी, हम नहीं इस्लाम ला सकते। उस वक्त क्या हुआ था, ऐन समंदर के बीचों बीच जब पहुंचे तो अल्लाह ने अपने बंदे के दिल को पकड़ लिया, इतना सख्त तूफान था, कश्ती तूफान में ऐसी फंस गई, लोग बेकरार होके ना अपने बुतों को पुकारना शुरू हो गए, लेकिन जब कश्ती बिल्कुल हचकोले खाने लगी, अब लग रहा था अभी गए और अभी, अब नहीं बचना, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई सूरत बाकी रह गई नहीं, तो सब ने बुतों को छोड़ के एक अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। तब इकरमा का दिल खुल गया और कहने लगा यही तो वो बात है कि इतने अरसे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे थे और हम मान नहीं रहे थे, उस वक्त किसी ने किसी बुत को नहीं पुकारा, सब एक अल्लाह को पुकारे थे कि अल्लाह अब तो तू ही बचाएगा, अब अल्लाह कोई नहीं और बचा सकता, उस वक्त कहने लगे अल्लाह एक मौका और दे दे, एक बार जिंदगी मिल गई तो मैं एहद करता हूं कि अब तेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, और अल्लाह ताला ने फिर वो मौका दिया और इकरमा इस्लाम ले आए थे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बच्चे अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा, अल्लाह को याद रखो तो उसे अपने सामने पाओगे, तुम सवाल करोगे तो अल्लाह ही से सवाल करो, मदद मांगो तो उसी से मदद मांगो, यकीन कर कि अगर तमाम लोग तुझे नफा पहुंचाने पर इत्तेफाक कर लें तो इतना ही पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, अगर सब मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तुझे तेरे लिए लिख दिया, कलम उठा लिए गए और किताबें खुश्क हो गई हैं। ये वो रब है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये दिखाया है। देखिए यहाँ पे फिर अल्लाह ताला कहते हैं वह जालुकुम खुलफा अल अर्द, और फिर अल्लाह ही है वो कि जब एक नस्ल आती है तो उसके बाद दूसरी नस्ल को लेकर आता है, उसका जानशीन बनाता है, अल्लाह ने ऐसा ज़मीन का इंतज़ाम किया है, एक नस्ल के बाद जब वो अपने तजुर्बात कर लेती है, वो अपने तरीके चला देती है, फिर वो नस्ल चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर उसके बाद तीसरी आ जाती है। अगर आज सारे पहले सारे लोगों को अल्लाह ना उठाता और वो जिंदा करके आज वापस दुनिया में भेज दिए जाए, तो इस जमीन पर रहने की एक इंच जगह भी ना मिलेगी। ये बताओ, एक नस्ल के बाद दूसरी को कौन लेकर आता है? तुम्हारा जानशीन दूसरों को, तुम्हारी औलादों को कौन बताता है? मगर कितना कम तुम सबक लेते हो, कलील अम्मा तज़क्करून, कितना कम तुम सबक पकड़ते हो। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं हम सबसे ये सवाल है। पढ़ लिख के भी कभी हम कुरान पढ़ते भी हैं, उसके बाद भी शिर्क में मुब्तला रहते हैं। तो देख लो फिर, उस वक्त को याद कर लो जब तुम बिल्कुल ऐसे मायूस हो गए थे, किसने तुम्हारी तकलीफ को दूर किया था। उसके बाद फिर भूल जाया करते, हम तो ऐसे भूलने वाले हैं, फिर गाफिल हो जाते हैं। फिर तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लों को कौन यहाँ पे आबाद करता है? इंसान अल्लाह के एहसान को माने, अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया उसका। और देखें, इस पूरे शुरू से लेके अभी तक की आयतों में और आगे भी आप देखेंगे, मुसलसल यही कहा जा रहा था, इलाहुम्मा अल्लाह। देखो जमीन को किसने बनाया, तुम्हारे लिए आसमान को किसने बनाया, तुम्हारे लिए देखो ये बागात किसने उगाए, ये बारिश किसने बनाई, इलाहुम्मा अल्लाह। फिर भी तुम समझते हो कि अल्लाह के सिवा कोई और है, उसके साथ कोई और है। जमीन को करारगाह किसने बनाया, समंदरों के दरमियान ये हिजाब किसने रखा, एक मीठा एक कड़वा है। ये पर्दा देखे नजर नहीं आता, गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ एक खारा पानी, एक तरफ मीठा पानी। वो सब आसमानों पे होते हुए समंदरों के पानी को मिलने नहीं देता। फिर एक फल है, उसमें एक खुशबू एक जायका है, दूसरा फल है दूसरी खुशबू दूसरा जायका। आम फर्क है खरबूजे से, एक फूल की महक कुछ है दूसरे की कुछ और है। एक पत्ती देसी गुलाब की ले आए, सारी मस्जिद को महका देती है। तुम्हारे लिए बागात किसने बनाए जिसमें ऐसे फूल उगाए, ये कैसा परफ्यूम डाल दिया, किसने डाला इसमें? ना जमीन में खुशबू, ना पानी में खुशबू, ना धूप में खुशबू, किसने ये परफ्यूम इसमें डाला? है मेरे बंदो, फिर बताओ तो सही, जिसने ये सब तुम्हारे लिए किया, ये सारा निजाम चलाया, ये तुम कर सकते थे, मगर ये सब कुछ देख के भी तुम मुझे छोड़ के जाते हो। आ इलाहुम्मा अल्लाह, असल तर्जुमा तो ये है ना कि कोई अल्लाह के सिवा और है, अल्लाह के साथ कोई और भी इला है, लेकिन हमारे जैसों को अल्लाह ताला फरमा रहे। ये अजीब तुम मेरे बंदे हो, इतना कुछ देख के भी जब तुम्हारी बेकरारियों में, जब तुम्हारी मुसीबत में, जब तुम्हारी परेशानी में तुमने मुझे पुकारा और मैंने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पुकार को सुना, मैंने तुम्हारी तकलीफ को दूर किया, फिर तुम अजीब मेरे बंदे हो, इतना कुछ देख के भी तुम मुझे छोड़ के औरों के दर पे जाते हो। तुमने आसमान की बुलंदियां भी देख ली, तुमने जमीन का बिछावा फर्श भी देख लिया, तुमने बारिश के मोती बिखरते भी देख लिया, तुमने बिजली को गरजते भी सुन लिया, तुमने उसकी चमक को भी देख लिया, तुमने खूबसूरत फल भी देख लिए, पत्तियां भी देख ली, दरख्त भी देख लिए, फूल भी देख लिए, कायनात में तुमने सब्जे का फर्श बिछा हुआ भी देख लिया, पहाड़ों की चोटियां भी देख ली, ये सब देख के भी तुम मुझे छोड़ के चले। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या है उसके जैसा कोई और अल्लाह तुम्हें मिलेगा? कोई और इलाह मिलेगा क्या, उसके जैसा कोई और ढूंढ के ला सकते हो? जब तुम दुखी होते हैं रात के वक्त और तुम किसी और को नहीं पुकार सकते, किसी को नहीं जगा सकते, माँ को भी जगाओगे तो वो भी कहेगी नींद डिस्टर्ब करती मेरी, सारी रात बच्चे के लिए जागना पड़ा, कहती है ना माँ आज सारी रात मेरे बच्चे ने सोने नहीं दिया, इसकी वजह से मुझे मेरी सारी रात की नींद खराब हो गई। वो रब कहाँ से लेकर आओगे कि तुम रात को पुकारो या दिन को पुकारो, अकेले में पुकारो या सबके पास बैठे हुए हो, तुम्हारे इर्द गिर्द लोगों का एक जमघट्ठा लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी इंसान हजूम में भी होते हुए अकेला होता है। आप हज पे जाएं, हज में कभी कभी लोग गुम हो जाते हैं, अब वो इर्द गिर्द देखते हैं इंसानों का समंदर है, लेकिन फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है, तनहा महसूस करता है। कई लोग रोने लग जाते हैं वहां पे कि हम गुम हो गए, हालांकि सारी तरफ इंसान ही इंसान है, उस वक्त इंसान किसको पुकारता है? सब कुछ देख के भी, ये सब कुछ समझ के भी तुमने उस रब को छोड़ दिया, चंद टकों की खातिर, चंद ख्वाहिशात की खातिर। ये तुम देखते नहीं हो, ये अमेरिका की जमीन किसने बिछाई है, किसने दरिया यहाँ पे बहाए, किसने यहाँ पे पहाड़ गाड़े, कड़वे मीठे पानी को किसने जुदा किया। आ इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई फिर अल्लाह के सिवा। लेकिन बल अक्सर हुम ला यालमून, फिर भी अक्सर को मेरी पहचान है ही नहीं, ना लेना चाहते इल्म, लेना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, मुझे छोड़ के गैरों के पास जाते। कौन है जो तुम्हारी हाय हाय पे लब्बैक कहता था, कौन है कि जब तुम कहते हो या अल्लाह तो कहते लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर मेरे बंदे, वो कौन है जो ये कहता है। तो कौन है तुम्हारे अंदर के दर्द को समझने वाला, कि कभी आप भूलना भी चाहते ना, किसी को बताते भी हैं तो वो दूसरा समझ ही नहीं पाता, वो आपके गम को, आपकी तकलीफ को समझ नहीं पाता कि आपके अंदर क्या गम है। तो उस वक्त कौन है जो इसको समझ सके, तुम्हारे अंदर की पुकार को सुन सके, कौन है जो टूटे हुए दिलों की आह को सुने, कौन है जो मजलूम की फरियाद को अर्श पर बैठा हुआ जानने वाला है। वो कौन है, वो कौन है जिसने यूनस को समंदर के अंधेरों में मछली के पेट में महफूज रखा, वो कौन है जिसने भड़कती हुई आग में इब्राहिम को महफूज रखा। फिर भी तुम समझते नहीं हो, फिर भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते। ये बात कितनी कलील अम्मा तज़क्करून, अल्लाह ऐसा इलाह को कहाँ से लाओगे, ढूंढो तो सही इस कायनात में, वो किसी और को बनाना चाहते हो इलाह, जाओ ढूंढो, ऐसा इलाह मिल सकता है तुम्हें, ऐसा रब मिल सकता है तुम्हें कि इंसान बोल के भी बताए किसी को तो वो समझ ना पाए आपकी बात, और एक वो रब है कि तुम दिल में ही कहते हो ना, वो समझ जाता है, वो सुनता है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आती, फिर भी भूल जाते हो, फिर उसके बाद फिर अपने जैसों के पास ही दौड़े चले जाते हो, हालांकि वो तो खुद मोहताज है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।